पृथिव्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो यारज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे मत्तु यार दिव्यध्वनियो लोकहितवमाडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की समूर्चन संसारी जीवों का कथन चार्ट के माध्यम से हम समझ रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव जो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि है, कौन सा सम्यक दृष्टि? प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव है, वह अंतर मुहूर्त काल तक ही सम्यक दृष्टि बन के रह सकता है। कैसा सम्यक दृष्टि? प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि बनकर अंतर मुहूर्त तक ही रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। इसके पश्चात या तो वह क्षायोपशम सम्यक दृष्टि बनता है या तो वह मिथ्यात्व गुणस्थान में आकर मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इस समय में उस प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि को यह नियम है कि वह नियम से द्वितीय गुणस्थान में आकर के ही प्रथम गुणस्थान में जाएगा। ध्यान में रखेंगे इस बात को। हाँ, टिप टॉप बैठ जाएं, पहले बैठने में ही 10 मिनट लगते। हाँ, क्या बताया? प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि नियम से किस गुणस्थान में गिरता है? दूसरे गुणस्थान। प्रथमोपशम सम्यक तो का काल कितना है? अंतर मुहूर्त। नियम से द्वितीय गुणस्थान में आता है। यदि वह द्वितीय गुणस्थान में आ गया और मरण भी हो गया, मरण होता ही है ऐसा नियम है क्या? नहीं है। अकस्मात मरण हो गया, उस समय आयु पूर्ण हो गई और मरण हो गया, तो वह कहां कहां जा सकता है यह नियम बताया जा रहा है। त्रिरंच पर्याय की जो योनि है उन योनियों में वह कहां कहां पर जा सकता है और कहां नहीं जा सकता। द्वितीय गुणस्थान में मरण करके, प्रथम गुणस्थान में नहीं और चतुर्थ गुणस्थान में भी नहीं। द्वितीय गुणस्थान में मरने वाला वह त्रिरंच समूर्छन जीव, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक का समूर्छन जीव कहां कहां जा सकता है? तो एक इंद्री जीव तो द्वितीय गुणस्थान में मरण करेगा, तो द्वितीय गुणस्थान सहित यदि पंचेंद्री हो तो शरीर से पंचेंद्री है, सौधनी पंचेंद्री है, सम्यक दृष्टि है और मरण कर गया, द्वितीय गुणस्थान में आकर के मरण किया तो एकेंद्रियों में कहां कहां जा सकता है? तो बादर पृथ्वी का एक बनेगा, सूक्ष्म नहीं बनेगा। बादर पृथ्वी का एक बनेगा, सूक्ष्म नहीं बनेगा। सूक्ष्म पृथ्वी का एक। बादर जल का एक बनेगा, सूक्ष्म जल का एक नहीं बनेगा। प्रत्येक वनस्पति का एक बनेगा, किंतु साधारण वनस्पति का एक जीव नहीं बनेगा, यानी निगोद जाएगा नहीं। यानी न तो बादर निगोदी बनेगा, न सूक्ष्म निगोदी बनेगा, किंतु प्रत्येक वनस्पति का एक जीव बनकर जन्म ले सकता है। क्या बनकर? प्रत्येक वनस्पति कायिक बनकर जन्म ले सकता है, और प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते। और उनमें भी दो भेद हैं बादर में, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। तो दोनों में जा सकता है, जा करके सप्रतिष्ठित भी बन सकता है और अप्रतिष्ठित भी बन सकता है। तो यहां बन रहा है तो किस गुणस्थान सहित आकर के बन रहा है? दूसरे गुणस्थान के साथ आकर के बन रहा है। अपर्याप्त अवस्था में, यानी निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में कौन सा गुणस्थान है? दूसरा गुणस्थान। और पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद पहला गुणस्थान। एकेंद्रीय जीव की पर्याप्तियां कितनी होती हैं? चार होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, ये चार। भाषा नहीं है उसको, बोल नहीं सकता, और मन भी नहीं है, विचार करने की शक्ति नहीं है। श्रुत ज्ञान है उसके पास, परंतु विचार करने की शक्ति उसके पास नहीं है। श्रुत ज्ञान विचारक ही होता है, लेकिन मन मिल जाए तो विशिष्ट विचारक होता है। जीव विचारक है, किंतु जीव विचारक है किंतु उसमें भी बंदर पर्याय में पैदा हो गया तो कितना चंचल होगा। बंदर चंचल रहता है क्या? मनुष्य बहुत चंचल रहता है, वो एक पेड़ पर बैठ नहीं सकता। ऐसा हमारा मन बंदर के समान बहुत चंचल होता है। जिसको मन मिल गया वो उतना ही चंचल वृत्ति से पापाश्रव करने लगता है। जहां पापाश्रव करने की उसके पास शक्ति है, वहां पर पुण्याश्रव भी कर सकता है, लेकिन मन को कंट्रोल करे तब ना। श्रुत ज्ञान तो उसको सहारा दे रहा है। श्रुत ज्ञान अपने संकट से बच सकता है, ज्ञान अपने संकट से बच सकता है, लेकिन मन को सदुपयोग कर ले तो ज्ञान संकट से बच सकता है। और मन का दुरुपयोग हो जाए ज्ञान के द्वारा तो फिर संकट से बच नहीं सकता। चतुर्गति का भ्रमण किससे हो रहा है? ज्ञान के द्वारा हो रहा है, लेकिन किस ज्ञान के द्वारा अधिक से अधिक हानि होती है, अधिक से अधिक संकट आते हैं, अधिक से अधिक दुख आते हैं? तो संगी पंचेंद्री के पास जो श्रुतक ज्ञान है, उस श्रुतक ज्ञान के ऊपर संकट भी उतने ही आ सकते हैं, तो सुख भी उतना ही आ सकता है। जितना बड़ा संकट और उतना बड़ा सुख भी आ सकता है। इसलिए हमें मन को जगाना है क्या ज्ञान को जगाना है? ज्ञान को जगाना है। ज्ञान जग गया तो जगा हुआ ज्ञान मन को अपने आप कंट्रोल करेगा। ज्ञान को संभालना है, और ज्ञान न होने से ही संसारी प्राणी संसार में भटक रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। हम गलत गलत सोचते हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमारा ज्ञान भटका हुआ है, हमारे ज्ञान को परिचित नहीं है। हमारे ज्ञान को अपना हित किसमें है यही परिचय में नहीं आया। ज्ञान को जो संभालेगा, मन को संभालना ही नहीं पड़ता, मन अपने आप कंट्रोल में आता है। ज्ञान पागल हो गया है। सदसतोर विशेषात दृक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत उन्मत्तवत, पागल के समान है ये श्रुतक ज्ञान। कौन सा श्रुतक ज्ञान पागल के समान है? तो कहते हैं जो आगम को नहीं जानता, केवली भगवान की वाणी को नहीं जानता, तो वह वस्तु स्वरूप के सत असत विवेक को भी नहीं रखता। सत क्या है, असत क्या है, हे क्या है, उपाधि क्या है, उसको मालूम नहीं रहता। अब वह संगी पंचेंद्री बन गया है। संगी पंचेंद्री बनने के उपरांत जिनवाणी का अगर ज्ञान नहीं है, श्रुत का ज्ञान नहीं है, द्रव्य श्रुत हमारे पास नहीं है, तो भाव श्रुत की उत्पत्ति भी नहीं होगी। समीचीन भाव श्रुत की उत्पत्ति, वैसे भाव श्रुत सबके पास होता है, लेकिन किस काम का? भाव श्रुत सबके पास है लेकिन किस काम का? जिनवाणी का ज्ञान जिसके पास होता है, उसका भाव श्रुत इतना अच्छा होता है कि वह सत असत को जानता हुआ पापाश्रव को रोकता है, पाप कर्म बंध को रोक करके संकट से मुक्त होता है। ऐसा विवेकपूर्ण श्रुतक ज्ञान हमारे जीवन में आवश्यक है, इसलिए श्रुतक ज्ञान को हम स्वाध्याय के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। जीव सिद्धांत चर्चा अभी प्रारंभ में ही है, कितना अच्छा लग रहा है। ज्ञान होता जा रहा है, ज्ञान बढ़ता जा रहा है, कुछ तो समझने के लिए मैटर मिल रहा है। ये अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है? तो श्रुतक ज्ञान अपना सुधर गया तो मन को कंट्रोल अपने आप हम करेंगे या मन का कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा? हम अवश्य कंट्रोल करेंगे उसको। मन जो पाप करता है वो सबसे बड़ा पाप करता है। व्यक्ति के जीवन में शरीर के माध्यम से इतना पाप नहीं होता, बोलने के माध्यम से भी इतना पाप नहीं होता, न काय योग से इतना पाप होता है न वचन योग से, किंतु मनोयोग से बहुत पाप होता है। मनोयोग से पाप करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, एक जगह बैठे 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 बुरा सोचते रहो, बुरा सोचते रहो। और व्यक्ति जितना बुरा सोचता है दूसरे के संबंध में, दूसरे को लेकर, उतना ही पापाश्रव कर बैठता है। और उसका परिणाम कौन भोगता है? आत्मा भोगता है, आत्मा ही भोगेगा। और इसमें आत्मा में मूल अपराध किसने किया? मन ने नहीं किया। वैसे तो श्रुतक ज्ञान ने गड़बड़ किया, श्रुतक ज्ञान ने जिनवाणी का अध्ययन नहीं किया, अपने भाव श्रुत का और द्रव्य श्रुत को बढ़ाया नहीं, जगाया नहीं, इसलिए मन चंचल रहा। मन क्या करेगा? ज्ञान समला हुआ नहीं है तो मन तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। दुनिया में ऐसे कौन व्यक्ति है जो बार बार मन के माध्यम से बुरा विचार करता है? जिनवाणी को जानने वाला या जिनवाणी को न जानने वाला? जिनवाणी को न जानने वाला बैठे 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 कुछ न कुछ बुरा ही सोचता है। अच्छे लोगों के संबंध में भी बुरे विचार आते हैं उसको, और फिर बुरे लोगों के संबंध में बुरे विचार आते कि नहीं आते? लेकिन कम आते। क्यों कम आते? क्योंकि बुरे लोग अपने समान ही लगते हैं, वो खुद के समान लगते हैं। बुरे लोग खुद के समान लगते हैं, इसलिए उनके संबंध में ज्यादा बुरा विचार नहीं करता। जो अच्छे लोग हैं ना, वो अपने समान नहीं दिखते, इसलिए उल्टे विचार आते हैं। ये ऐसा क्यों? ये मन की और ज्ञान की परिस्थिति है। मूल में हम ज्ञान को सुधारते हैं तो मन तो अपने आप सुधर जाएगा। और ज्ञान को सुधारने के लिए समय बहुत चाहिए पड़ता, वो एक दिन का काम नहीं है। जीवन में चारित्राना एक दिन में हो जाएगा, सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लेना अंतर मुहूर्त में हो जाएगा, लेकिन सम्यक ज्ञान को, जिनवानी के ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक अंतर्मूर्त पर्याप्त नहीं। जिनवानी की आराधना तो मरण पर्यंत करते हैं, मुनि महाराज भी अध्ययन करते ही रहते हैं, अध्ययन करते ही रहते हैं, चिंतन करते ही रहते हैं, उस सम्यक श्रुतक ज्ञान को बढ़ाते ही रहते हैं। और इस ज्ञान के बिना किसी का कल्याण नहीं होता, इसलिए बार बार स्वाध्याय में इंटरेस्ट लेना आवश्यक है। कोई कोई ऐसा सोचते हैं, महाराज हमने तो अच्छा प्रवचन सुना है, जब से वो प्रवचन सुना है फिर प्रवचन सुनने की आवश्यकता ही हमें नहीं पड़ी। एक बार जो सुना है उसके बाद तो हमने कभी सुनने के भाव ही नहीं किए, बस हम धर्म को सब समझ लिए, आत्मा को सब समझ लिए, और फिर काम क्या करते हैं पूछा जाए, संशोधन किया जाए, तो व्यक्ति के पास पंचेंद्रिय विषयों की चर्चा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। मुनि महाराज जिन्होंने पंचेंद्रिय विषयों को छोड़ दिया, वो निरंतर श्रुत ज्ञान का अभ्यास करते रहते हैं, और फिर ये गृहस्थ को जहां पर रहता है वो पंचेंद्रिय विषय चारों ओर बिछाए हुए हैं, मन वहां नहीं दौड़ेगा तो कहां दौड़ेगा, स्वाध्याय तो करते नहीं और मंदिर भी जाते नहीं, देव दर्शन तक नहीं करते, पूजन तक नहीं करते, सामायिक भी नहीं करते, आत्मा का ध्यान भी नहीं करते, और ऐसी परिस्थिति में मन जाएगा कहां उसका, पंचेंद्रिय विषयों में जाएगा, परिग्रह में जाएगा, और परिग्रह में जाएगा तो संक्लेश परिणाम उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे, भाव अशुभ बनेंगे कि नहीं अशुभ बनेंगे, और भाव अशुभ बन गए तो क्या निकला उससे। एक बार तुमने सुन लिया कि भी कभी जिंदगी में प्रवचन, एक बार सुन लिया, और उससे उसको सुनने के बाद तो कभी हमको सुनने के भाव ही नहीं होते, नहीं गलत है। जिनवानी को बार बार सुनने का उपदेश भगवान ने दिया है। यदि हम अपनी आत्मा का उद्धार चाहते हैं, अपनी आत्मा का विकास चाहते हैं, अपनी आत्मा को दुख से मुक्त करना चाहते हैं, तो ऐसे अज्ञानता से सोच करके कभी भी बैठना नहीं चाहिए कि हो गया, नहीं, अपन लोगों में भी यही हो जाएगा देख लेना, किसी किसी के जीवन में तो होता ही है, लेकिन अपना जीवन भी, ये जो चतुर्मास के 3.5 महीने है ना, आदि के जो 2 माह हैं, इसमें तो बहुत उत्साह है, जिनवानी स्वाध्याय और प्रवचन बहुत उत्साह है। 10 लक्षण खत्म हो गया तो फुस हवा निकल जाती गाड़ी की। ऐसा क्यों होता है, नहीं हो गया धर्म, चातुर्मास में तो 2 ही महीने प्रवचन सुनना रहता है, फुस। ऐसा होना चाहिए क्या, तो क्या करेंगे, 2 महीने बाद फुस करोगे। जिनवानी का स्वाध्याय निरंतर सत्संग मिलने पर चलते रहना चाहिए, सत्संग छूट जाए तो दुख होना चाहिए, सत्संग छूट जाए तो दुख होना चाहिए, सत्संग मिल जाए तो निरंतर प्रयास, निरंतर अभ्यास, निरंतर श्रम, निरंतर चिंतन चलते ही रहना चाहिए। संसार के काम तो है ही, वो तो जिंदगी भर करते आए हैं, अनादिकाल से भी किए हैं, लेकिन जिनवानी की उपासना हमने किसी एक जन्म में भी नहीं किया है, एक जन्म में भी, इसलिए तो हम संसार में हैं। चतुर्गति में क्यों भटक रहे हैं, आज हम मनुष्य गति में क्यों हैं, जिनवानी का अध्ययन न होने से। जिनवानी में मन रमा रहेगा, जिनवानी में लगा रहेगा, तो मन संस्कारित होता है, बार बार हैमरिंग होता है उसको, पाप को नहीं बांधना, पाप को नहीं बांधना, ऐसा नहीं विचार करना, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं चलना, इसकी शिक्षा, इसका संस्कार मिलता है और संस्कार से शिक्षा प्राप्त होती है। शिक्षा के कारण हर समय हमको याद आती रहती है जिनवानी की बात। हम चल रहे हैं तो पहले अज्ञान अवस्था में देखे बिना चलते थे, दौड़ते थे, हम जा रहे हैं तो गाड़ी से जा रहे हैं, अज्ञान अवस्था में गाड़ी से जाते थे, यहाँ का वहाँ जाने के लिए भी गाड़ी से जाते थे, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे पास भी गाड़ी है, हम यहाँ इतना भी नहीं चलते, हम गाड़ी से ही चलते हैं। देखो कितना स्टैंडर्ड जीवन बन गया है हमारा। अज्ञान अवस्था में भी स्टैंडर्ड बनता है, लेकिन किसमें स्टैंडर्ड बनता है? पंचेंद्री विषयों में। और यदि ज्ञान के द्वारा आप आत्मा को स्टैंडर्ड बनाएंगे तो पंचेंद्री विषय ऐसे लगने लगते हैं ये ठीक नहीं, आवश्यक तो है लेकिन जीवन चलाने के लिए, इसमें आनंद नहीं है, इसमें दुख है, इन पंचेंद्रिय विषयों को मैं आनंद के साथ भोगूंगा तो कर्म उतना ही उत्कृष्ट पाप कर्म बंधेगा, स्टैंडर्ड वाला पाप कर्म बंधेगा। भौतिक सुखों में, भौतिक इंद्रिय सुखों में जितना स्टैंडर्ड विचार उतना ही स्टैंडर्ड कर्म का आश्रव और बंध। ज्ञानी का जीवन ऐसा नहीं होता। एक सद्गृहस्थ श्रावक जो होता है ना, ज्ञानी श्रावक, उनका विचार ऐसा नहीं होता। पंचेंद्रिय विषय मिलने के बाद भी देखो चक्रवर्ती को क्या नहीं मिला था, षटखंडाधिपति चक्रवर्ती नित्य नए इंद्रिय विषयों को भोगने के सारी सामग्री बिछी हुई है, उनको क्या कम है, लेकिन वो ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं। और अपन को कुछ मिला नहीं है फिर भी हम स्टैंडर्ड समझते अपने आप को, चक्रवर्ती से बड़ा समझते, चक्रवर्ती से तो मन से तो बहुत बड़े हैं हम पाप करने में, स्टैंडर्ड मन है अपना। ये इंद्रिय विषय दिखते हैं मधुर, दिखते हैं मधुर हैं, ये तलवार के ऊपर शहद यानी मद लेप किया गया है और व्यक्ति वो मीठा है, वो मीठा है कह करके चाटने के लिए जाता है, जब वो चाटने लगता है तो जीभ कट जाती है। इंद्रिय विषय मद के समान है लेकिन नीचे तलवार है, उन विषयों के नीचे तलवार है, और हम जैसे ही उसका उपभोग करने का प्रयत्न करते हैं एक तरफ हमारी आत्मा कट जाती, हमारा सुख विच्छेद होता है, आत्म सुख का विच्छेद होता है और भौतिक सुख मिल जाता है, लेकिन क्षणिक, भोगते समय मधुर, भोगने के उपरांत दुख के कारण वही बन जाते हैं। ये निरंतर सुख नहीं है। अब देखो कोई भी इंद्रिय सुख निरंतर है क्या? बोलो क्षणिक है क्या? नहीं। इसलिए मद का उदाहरण दिया है, तलवार के ऊपर लेप किया हुआ मद, उसका उदाहरण दिया है, क्षणिक है। जैसे आपको खाते पीते समय कोई ना कोई एक फेवरेट वस्तु तो होती है आपकी, होती है कि नहीं? किसी को जलेबी है, किसी को लाड़ू है, किसी को कुछ है, इंद्रिय विषय तो हैं खाने के, रसनेन्द्र के विषय हैं। इसको खाते समय हमारा मन उधर दौड़ता है, जिसको उस मन ने जिस वस्तु को अपना फेवरेट बनाया है, उधर ही जाएगा। अच्छा, मान के चले कि लाडू को, उसमें भी कौन सी लाडू, वो भी फेवरेट है वो बूंदी का लाडू नहीं, गेहूं का, गेहूं का क्या बोलते उसको, गरे का, हाँ रवा लाडू, रवा लाडू को, किसी को रवा, किसी के मन को रवा लाडू फेवरेट है, किसी के मन को बूंदी लाडू फेवरेट है, किसी के मन को ये दोनों नहीं है जिलेबी फेवरेट है, किसी के मन को गुलाब जामुन फेवरेट है। खाने पीने की इन वस्तुओं को क्या हमको फेवरेट बनाना चाहिए? बनाना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। खाने पीने की वस्तुओं में फेवरेट नहीं बनाना। अपने स्वास्थ्य के अनुकूल कौन सा है कौन सा नहीं है, अपने धर्ममय जीवन जीने के लिए कौन सी वस्तु हमें स्वास्थ्य के लिए लाभ करेगा, ये देखना है और भोजन करना है, ये कला सीखनी चाहिए, ये जीवन जीने की कला, धर्ममय जीवन ये है। सुख के जीवन जीने की कला क्या है, वही सिखाया जा रहा है। हमने फेवरेट बना लिया, तो फेवरेट कौन बनाता है, ज्ञानी के अज्ञानी? अज्ञानी। पर वस्तुओं में जिसको रस आता है, इंटरेस्ट आता है, वो फेवरेट बना लेता है। लेकिन वस्तुतः किसी भी वस्तु को फेवरेट बना ही नहीं, बनाना ही नहीं, उस वस्तु से लाभ हानि इतना ही देखना। शरीर स्वास्थ्य के लिए ठीक है या नहीं, स्वास्थ्य हो तो ही धर्म चलेगा, और स्वास्थ्य ना हो तो धर्म नहीं कर सकेंगे आप। तो खाते पीते समय में भी धर्म है, कौन सा धर्म? विदाउट फेवरेट हम भोजन कर रहे हैं, यही हमारा आचरण है, धर्माचरण, खाते हुए भी धर्म है, उदासीन भाव से, उदासीन तो होना ही चाहिए, लेकिन उदासीन होकर के भी उसमें रस नहीं आना चाहिए, कोई भी वस्तु फेवरेट नहीं बनना चाहिए। अब फेवरेट है तो उदासीनता तो होती ही नहीं, सब चीजें समान हैं, सरस भी समान और नीरस भी समान। जैन शास्त्रों में श्रावक और मुनियों के लिए रस परित्याग का उपदेश दिया है। रस परित्याग यह बहिरंग तप है। कौन सा तप कहा? बहिरंग तप। हम रस का परित्याग करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं? आज हम घी नहीं खाएंगे, आज हम नमक नहीं खाएंगे, आज हम शक्कर नहीं खाएंगे, षड्रस है ना, उसमें से एक दो या सभी रसों को त्याग करके हम भोजन करते हैं, किस उद्देश्य से ऐसा करना चाहिए? हाँ, इंद्रियों को वश करने के लिए, इसका अर्थ इंद्रिय वश में तो है ही, अपने शरीर को छोड़कर कहीं भाग नहीं रहे हैं, अपने अंडर में ही हैं, इंद्रियों को वश नहीं करना है, इंद्री विषयों की आशा को वश में करना है। ये विषय आशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। इंद्रियों को वश में नहीं करना है, इंद्री तो भागने वाले हैं, हमेशा घोड़े हैं वो, घोड़ों को वश में नहीं करना है, घोड़े की जो इच्छा है घोड़े की जो इच्छा है, इच्छा को अपने अंडर में लेना है। घोड़ा क्या चाहता है ये मालूम है अपने को, क्या चाहता है ये खाता है, तो उसकी जो इच्छा है ना, इच्छा को कन्वर्ट करना। और ये घोड़ा कहीं दूसरा नहीं है, ये इंद्रियां तो ये इंद्रियां तो घोड़े हैं, लेकिन इस घोड़े की जो इच्छा है वो हम हैं। देखो घोड़ा अलग और वो इच्छा अलग। इस घोड़े की जो इच्छा है वो हम हैं, आत्मा है, ज्ञान है। ज्ञान अज्ञानी बनकर पर वस्तुओं में रमन करता है, मन नहीं दौड़ता। मन को दौड़ाने के लिए हमारा श्रुतक ज्ञान काम करता है। श्रुतक ज्ञान क्योंकि जिनवाणी का ज्ञान के अभाव में, हे और उपाधि के ज्ञान के अभाव में वो गड़बड़ कर रहा है, वो ही इच्छा कर रहा है। हम अपने श्रुतक ज्ञान की इच्छा को कंट्रोल में लेते हैं तो मन कहाँ जाने वाला है। मन भी घोड़ा है, पांच इंद्रियां भी घोड़े हैं, छह घोड़े हैं। ये आत्मरूपी रथ को छह घोड़े खींच रहे हैं, शरीर रूपी रथ को। हाँ, यूं कहें शरीर रथ है, आत्मा उसमें बैठा हुआ सारथी है। आत्मा सारथी है लेकिन स्वार्थी नहीं हो रहा है। वो स्वार्थी होने की कला नहीं सीख रहा है क्योंकि अज्ञान है। अज्ञानी आत्मा सारथी बनकर रथ में बैठा है तो ये घोड़े किधर भागेंगे? पंचेंद्रिय विषयों में भागेंगे। पंचेंद्रिय विषयों में न भागे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय करना पड़ेगा, अपने आत्मा के प्रति रुचि जागृत करनी पड़ेगी, अपने आत्मा की जो निधि है उसके प्रति अनुराग उत्पन्न कराना पड़ेगा श्रुतक ज्ञान को। श्रुतक ज्ञान ही गड़बड़ है। आचार्य श्री ने एक दो दोहे लिखे हैं, बहुत अच्छा है। ज्ञान दुख का मूल है। देखो क्या बता रहे हैं वो, समय सार का अनुवाद करते हुए किसी अधिकार के अंतिम उपसंहार में दो दोहे लिखे हैं, बहुत बढ़िया। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इसमें उचित को, चुनो उचित को, चुनो चुन चुन इसमें उचित को। अनुचित मत चुन, अनुचित को मत चुनो। अनुचित मत चुन, भूल भूल करके भी अनुचित को मत चुनो। कोटि शास्त्र का सार है, कोटि शास्त्र का सार है, निज बिन पर सब धूल। निज बिन पर सब धूल, निज यानी आत्मा, आत्मा के बिना पर सभी धूल के समान है। ये करोड़ों शास्त्रों का सार है और इस सार को जो करोड़ों शास्त्रों का मसाला वगैरह सब मिला हुआ सार है, इसको रोटी के साथ खाओगे कि चावल के साथ खाओगे, किसके साथ खाओगे, विचार करो। सबके साथ खाना चाहिए इस सार को। जहां रहोगे वहां उसी स्थान पर खाना सीखो। निज बिन पर सब धूल, एक ही वाक्य। और इसकी साधना क्या है, इस वाक्य की साधना? तो अनुचित मत चुन भूल। किस ज्ञान को चुनो? राग रहित जो अनुकूल ज्ञान है, राग रहित अनुकूल ज्ञान को चुन लो। राग रहित अनुकूल ज्ञान हमारा हितकारक है, सुखकारक है, सुखदाई है हमारे लिए, वो उसको चुनो। राग सहित जो ज्ञान है उसको मत चुनो, भूल करके भी मत चुनो। ये उपदेश है, क्योंकि हमारा ज्ञान ही दुख का मूल है और हमारा ज्ञान ही सुख का मूल है। सुख का और दुख का मूल दोनों ज्ञान ही है, इसलिए ज्ञान को सुधारो तो इंद्रिय और मन की चिंता ही मत करो, वो तो घोड़े हैं। घोड़े के मन को जिस सारथी ने जीत लिया, घोड़े उनको छोड़कर कहीं भाग नहीं सकते, यदि भाग भी जाएंगे तो वो सारथी के पास ही लौट करके आएंगे। कबूतर और तोता ये दो पक्षी हैं, इनका स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। कबूतर बहुत अच्छा मनुष्य के लिए, कबूतर बहुत सहयोग पहुंचाता है, कोई समाचार ले जा सकता है, आ सकता है, दे सकता है, आ सकता है, पोस्टमैन का काम भी कर सकता है, लेकिन तोता ऐसा नहीं करेगा, पोस्टमैन का काम नहीं कर सकता। आप पिंजरे से निकाल कर थोड़ा भी बाहर छोड़ोगे, लौट करके पुनः नहीं आने वाला है। तोता आ सकता है, नहीं वो कबूतर आ सकता है, कबूतर आ सकता है, कबूतर को अपना बना सकते हैं आप, उसको खिलाओ पिलाओ, 4 दिन रखो, 8 दिन रखो और बाहर छोड़ दो, वो आपका हो जाएगा, लौट करके आ जाएगा, खाना पीना जहां पर मिलता है वहीं पर लौट करके आएगा। लेकिन तोते को साल भर भी रख करके खिलाओ, आपका नहीं बनता, वो पिंजरे के बाहर छोड़ दिया तो छुट्टी, मुझे मोक्ष मिल गया, अब नहीं आऊंगा लौट कर संसार में। बंधन को स्वीकार नहीं करता तोता, कबूतर बंधन को स्वीकार कर सकता है, वो उसका स्वभाव है। तोता बनना अच्छा है क्या कबूतर बनना अच्छा? भावों की अपेक्षा से पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं कि उधर जाओ। न तोता बनना चाहिए, न कबूतर बनना चाहिए, न मनुष्य बनना चाहिए, संसार तो है ही है, किंतु परिणामों स्वभाव की अपेक्षा से ये उदाहरण है कि कबूतर का स्वभाव अच्छा क्या तोता का स्वभाव अच्छा? तोता का स्वभाव अच्छा है, वैसा सोचो एक दृष्टि से तो तोता का स्वभाव अच्छा, तोते के समान ही हमको रहना चाहिए। हाँ, आप रहो, घर में जन्म हुआ, ठीक, बड़े भी हो गए, और जो आपसे बड़े थे उन्होंने खिलाया पिलाया, ठीक है, बड़े हो गए ना, हो गए, पंख आ गए हैं ना उड़ने के लिए, उड़ने के लिए पंख आ गए हैं, उड़ जाओ, लौट के मत आओ, नहीं तो आपको कबूतर बना देंगे घर वाले। जो घर जाता वो कबूतर होता है, और जो घर नहीं जाता वो तोता होता है। ऐसा है तो अपने को होशियार रहना चाहिए, अपना श्रुतक ज्ञान तोते के समान रहना चाहिए, कबूतर नहीं बनाना उसको, श्रुतक ज्ञानी तो गड़बड़ कर रहा है। आपको राग पैदा होता है घर से, राग इंद्रिय विषयों से, राग मोह, राग यानी मोह, राग यानी क्रोध होता है मराठी में, घर से मोह, पदार्थों से मोह, ये मोह करने वाला कौन है? श्रुतक ज्ञान है, और ये श्रुतक ज्ञान अगर मोही बन गया, मोह करना ही इसका स्वभाव बन गया, तो तोता बन गया, नहीं कबूतर बन गया, राग करने वाला श्रुतक ज्ञान कबूतर बन गया, और राग करने के स्वभाव को त्याग करके स्वतंत्र रहने के, राग से स्वतंत्र रहो, राग नहीं करना, राग के बीच में नहीं जाना, रागी नहीं बनना, स्वतंत्र रहो, आत्मा को विशुद्ध रखो, निर्मोही रखो, तो क्या होगा? तोते के समान रहोगे, जिसका श्रुतक ज्ञान तोते के स्वभाव वाला है वो घर में बैठ नहीं सकता, और जिसका श्रुतक ज्ञान कबूतर के समान है वो घर छोड़ नहीं सकता। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। हम कबूतर हो, देखो ना, घर वालों ने आप कबूतर को उड़ाया है, जाओ कहीं जरा घूम के आओ। और उड़ते उड़ते हम आए कहाँ, प्रवचन सभा में आए हैं। ऐसा प्रवचन सुनकर के भी फिर भी वहीं पर पिंजरे में जाते हैं। तो फिर इस कबूतर की परिणति को ठीक करना, रिपेयरिंग करना बहुत मुश्किल है। ये अनादिकालीन संस्कार हैं, इसी को तोड़ना है। आचार्य से कहते हैं ज्ञान दुख का मूल है। ज्ञान ही कबूतर बन सकता है और ज्ञान ही तोता बन सकता है। कबूतर के स्वभाव को हटाकर तोता भी बनाया जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। अपना ज्ञान यदि कबूतर स्वभाव वाला बन पड़ा है तो तोते के स्वभाव वाला भी हम बना सकते हैं। कैसे? जिनवानी का संस्कार डालकर। ये रागादि भाव मेरे नहीं हैं, ये कोई भी इंद्रिय विषय, ये परिवार परिग्रह, ये कोई भी मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ऐसा हैमरिंग हो जाएगा ना, तो आपका कबूतर, श्रुतक ज्ञान रूपी कबूतर तोता बन जाएगा। राग सहित ज्ञान कबूतर है और राग रहित ज्ञान तोता है। वो पिंजरे में भी रहेगा तो राग रहित रहेगा। तोता सोच रहा है कि कब मुझे बाहर छोड़ेंगे और कब उड़ जाऊं, ये विचार करता रहता है। और छोड़ने वाला छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है ये तोता है, इसको छोड़ने से भाग जाएगा। पिंजरे में रहना चाहते हैं तो रहो, लेकिन कैसे रहो? तोता बनकर रहो, कबूतर बनकर के नहीं। ये संदेश है तीर्थंकरों का, ये शिक्षा है गुरुओं का, संदेश तीर्थंकरों का, शिक्षा गुरुओं का, और दीक्षा आपका। शिक्षा के बिना दीक्षा नहीं हो सकती। रहो घर में, कोई बात नहीं, मना नहीं करते, लेकिन कैसे रहो? तोते के समान, तोता बन करके रहो। घर में अगर परमिशन मिल गया तो उड़ जाओ। देखो कितने ही लोगों का ज्ञान ऐसा रहता है, राग से रंजित रहता है, कबूतर स्वभाव वाला ज्ञान। उनको पिंजरे से बाहर निकालने के बाद भी, छोड़ने के बाद भी लौट कर वहीं आते हैं। बताओ, घर वाले कह रहे हैं कि तुम दीक्षा ले जाओ, आत्मकल्याण करो, वो कहता है नहीं, तुम लो, पहला तुम लो। देखो, उनको कहने के लिए जाओगे ना, पहला तुम लो, फिर बाद में तुम्हारे पीछे पीछे मैं लेता हूं, ऐसा कहने लगता है। और यदि ऐसा कहने वालों को समझाने के लिए देख लूं कि मैं लेता हूं, पहला देखता हूं कि ये लेता है कि नहीं, तुम तो ले लोगे, वो नहीं आएगा। कहने के लिए कहता है वो, पहले तुम ले, बाद में तुम्हारे पीछे मैं लेऊंगा। नहीं लेने वाला है वो पक्का कबूतर है। कबूतर में भी पक्का कबूतर है वो, स्वभाव चेंज नहीं कर सकता। तो अपने स्वभाव में थोड़ा सा अंतर लाना है। वस्तु स्वरूप समझ में आ गया है तो अपने को पक्का कबूतर भी बन करके नहीं रहना है। कबूतर हो तो हो, रहो घर में, कबूतर बन करके भी रहो, लेकिन कम से कम पक्का कबूतर तो मत बनो, कच्चा कबूतर बनो। और ऐसे 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 कई कबूतर भी होते हैं, पालने के बाद भी एक बार आपने छोड़ दिया तो वापस नहीं आते हो, ऐसे भी कबूतर है, बहुत बिरले रहते हैं बहुत बिरले रहते हैं। तो देखो द्वितीय गुण स्थान में आया हुआ कोई संगी पंचेंद्रीय जीव सम्यक से च्युत होकर के आ गया, वो कहाँ कहाँ जाता है इस चीज को थोड़ा सा स्थान ध्यान में रखना है। वो बादर पृथ्वी कायिक में द्वितीय गुण स्थान सहित जा सकता है, बादर जल कायिक में द्वितीय गुण स्थान सहित जा सकता है, और बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक वनस्पति में, और सब वो दो प्रकार का सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में द्वितीय गुणस्थान सहित जा सकता है। और कहाँ जा सकता है? विकलत्रय में जा सकता है क्या? हाँ, विकलत्रय में भी जा सकता है, जैसे कि कल पढ़ चुके थे। विकलत्रय में क्या क्या बनता है? द्विइंद्रिय भी बन सकता है, तीन इंद्रिय भी बन सकता है, और चतुरिंद्रिय भी बन सकता है। पंचेंद्रिय में जा सकता है क्या द्वितीय गुण स्थान सहित? नहीं, पंचेंद्रिय समूर्छन नहीं बनेगा, समूर्छन पंचेंद्रिय में भी द्वितीय गुण स्थान सहित नहीं जाएगा, क्योंकि समूर्छन पंचेंद्रिय पर्याप्तक की अपेक्षा संघी पंचेंद्रिय पर्याप्तक समूर्छन जीव श्रेष्ठ कहलाते हैं। एक लब्धि अपर्याप्तक है और एक निवृत्ति अपर्याप्तक है। निवृत्ति अपर्याप्तक में वह जा सकता है, मिथ्यात्व को धारण करने वाला जीव। अब विकलत्रय में नहीं जाएगा, विकलत्रय सम्यक तो सहित नहीं जाएगा, द्वितीय गुणस्थान सहित जाएगा। ये पहला चार्ट हो गया समूर्छन जीवों की उत्पत्ति का। गुणस्थान दर्शाया है इस चार्ट में और कुछ नहीं। द्वितीय गुणस्थान सहित किस किस पर्याय में जा सकता है, तो इतना ही ध्यान रखना है। द्विइंद्री, तीनेन्द्री, चतुरेन्द्री, एकेन्द्रियों में पृथ्वी का एक बादर और जल का एक बादर में जा सकता है, वनस्पति कायिक में सप्रतिष्ठित प्रत्येक में जा सकता है और अप्रतिष्ठित प्रत्येक में जा सकता है, और शेष जो वायु कायिक है, अग्नि कायिक है और साधारण वनस्पति कायिक है, उनमें नहीं जाता, न बादरों में जाता है न सूक्ष्म में जाता है। अब ये प्रश्न उठाओ, सुन ही रहे हैं तो ये प्रश्न उठना चाहिए कि वायु कायिक बादर क्यों नहीं बन सकता? पृथ्वी का एक बादर बन रहा है तो वायु का एक बादर क्यों नहीं बनता? ऐसा जीव का ये सिद्धांत है। अग्नि का एक नहीं बन, बादर अग्नि का एक नहीं बनता, बादर वायु का एक नहीं बनता, और बादर साधारण वनस्पति का एक जो निगोदी जीव है उसमें नहीं जाता, न नित्य निगोद में जा रहा है न इतर निगोद में जा रहा है बादर बनकर, तो इन इधर क्यों नहीं जा रहा है? तो भगवान ने इतना ही कहा है उस संबंध में, इन पर्यायों में जाने के परिणामों का अभाव है। द्वितीय गुणस्थान सहित यदि जीव जा रहा है तो इन पर्यायों में जाने योग्य परिणामों का अभाव है। तो परिणामों का अभाव है तो जाएगा कैसे? फिर नहीं जाएगा, ये जीव सिद्धांत है। कहाँ जाता है और कहाँ नहीं जाता है तो यही तो समझना है, ये जीव सिद्धांत है। सिद्धांत सिद्धांत ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी अनादि अनंत काल से, अनादि काल के इन जीवों के जन्म मरण को केवल ज्ञानी ने केवल ज्ञान में देखा, लेकिन उनको केवल ज्ञान में ये दिखाई नहीं दिया कि वायु कोई पंचेंद्रीय जीव सम्यक तो से च्युत होकर द्वितीय गुण स्थान में मरा और बादर वायु का एक बना, बादर अग्नि का एक बना, बांदर साधारण वनस्पति का एक बना, ऐसा दिखा नहीं केवल ज्ञान में, और दिखा ही नहीं है तो उपदेश नहीं देंगे। जो दिखता है उसका उपदेश होता है। तो जीव सिद्धांत का जो उपदेश हुआ है वो केवल ज्ञान से हुआ है, और जो दिखा है सत्य उसका उपदेश हुआ है। चलते अगला, हाँ नहीं समझे हम क्वेश्चन। संगी पंचेंद्री का ही जो सम्यक से च्युत हुआ है, सम्यक दृष्टि तो संगी पंचेंद्री होता है, तो संगी पंचेंद्री जब च्युत होता है तो द्वितीय गुण स्थान में आता है। प्रथमोत्सम सम्यक दृष्टि संगी पंचेंद्री, तो इसके आगे क्या चाहिए? नहीं, इस चार्ट में तो इतना ही समझाया है, सम्मूर्छन त्रिरंशों के जो भेद हैं, त्रिरंशों के जो भेद हैं, इसकी जो वैरायटी है, द्वितीय गुण स्थान सहित कहाँ कहाँ जाता और कहाँ कहाँ नहीं जाता, केवल त्रिरंश गति संबंधित चर्चा हो रही है। अब देवगति में द्वितीय गुण स्थान सहित जाता है या नहीं, देवगति का चार्ट अलग है। मनुष्य गति में जाता है क्या नहीं, तो मनुष्य गति का चार्ट भी अलग है। तो वहां इसको समझेंगे, आगे आ रहा है वो। सम्मूर्छन जीव कर्म भूमि में ही होते हैं, ये तो पहले ही नियम बताया है, तो ये भोग भूमि की बात नहीं है, भोग भूमि में रहने वाले त्रिरंशों की बात नहीं है। हाँ मंगलाचरण अभी स्वाध्याय, हाँ कल कल देखिए। हाँ वो घड़ी बंद है, देखो नहीं पीछे पड़ रहा। ये घंटा पीछे चल रहा है वो,
टाइमिंग लगाया
वो गलत है। वो भी होशियार है, इनका मोह किसी न किसी प्रकार छूट जाए वो भी सोच रहा है, हमको नहीं कह रहा है वो, आपके मोह को छोड़ाने का विचार कर रहा है, हम तो ले ही रहे हैं। देखो कौन सा लेना, देवगति का लेते। ये जो पढ़ने का गद्य भाग था इसको भी पढ़ना चाहिए, लेकिन रहने दो, अभी देवगति का लेते हैं, सामान्य परिचय ले करना है, वो समय पर आ जाएगा सभी। देखो देवगति के देवों के भेद, देवों के कुल भेद कितने हैं? 10, 8, 96, हाँ 5, 96 और 23, इस प्रकार 16 और 23, हाँ 16, इसको मिलाने पर 23 हो गया, और सब मिलकर के 62 हो गए। देव मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, देवगति का चार्ट बहुत अच्छा है, समझिए इसको, बहुत बढ़िया है। हाँ उसमें नहीं दिख पा रहा है, देव के दो भेद हैं। पहला भेद क्या? अधो व मध्यलोकवासी देव, ये कितने प्रकार के? ये 23 प्रकार के। अधोलोक व मध्यलोक में भी देवलोक रहते हैं। आप कहेंगे स्वर्ग में ही देवों को रहना चाहिए, ये अधोलोक में कहाँ से आ गए? ऐसा नहीं, अधोलोक से ही देवों का निवास स्थान प्रारंभ होता है, अधोलोक में भी उनके जन्म स्थान हैं, आवास बने हुए हैं, उनको हम भवनवासी देव कहते हैं, व्यंतरवासी देव कहते हैं, और ज्योतिषवासी जो रहते हैं ये ऊपर रहते हैं, हमारे ऊपर सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह आदि में रहने वाले देव, ये ज्योतिष देव कहलाते हैं। देव देव लोग, हाँ देव लोक, हाँ देव लोक का मतलब देव जहां जहां रहते हैं वह सब लोक उनका है, निवास स्थान को ही लोक कहेंगे। जैसे भवनवासी देवों का स्थान है तो देवलोक है, वो भी देवलोक। तो 23 वेद अधोलोक में, ये जो हम मध्यलोक में बैठे हैं ना, ये मध्यलोक जहां पर हम बैठे हैं यहां पर भी देव रहते हैं, समुद्रों में, जैसे तत्वार सूत्र में पढ़ा है ना वो, देखो यहाँ दिखाते हैं, ये सरोवर है, इस सरोवर में भवनवासी देवियां हैं, तो ये मध्यलोक ही है, यहाँ पर भी देवगति है, देवलोक, ये भी देवलोक ही कहलाता है, देवों के रहने का स्थान देवलोक। हाँ यहाँ पर प्रधानता और गौणता की अपेक्षा से यदि कहे हम, जहां पर केवल देव ही देव रहते हैं, अन्य को ही नहीं रहते, तो वो देवलोक है, और जहां पर मनुष्य भी रहते हैं, त्रिरंच भी रहते हैं और देव भी रहते हैं, इसको गौणता से देवलोक कह सकते हैं, प्रधानता से नहीं। ऊर्ध्व लोक में यानी स्वर्ग में, वहां पर केवल देव ही हैं। ज्योतिर्लोक, वहां पर केवल ज्योतिषी देव ही रहते हैं, इसी ज्योतिर्लोक। स्वर्गों में केवल देव ही रहते हैं, अन्य कोई मनुष्य तिरेंच वगैरह नहीं रहते, इसलिए वह स्वर्गलोक या देवलोक। और व्यंतरवासी आदि देव ये समुद्रों में, सरोवर में, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे पर इनके कुछ आवास स्थान बने रहते हैं। जैसे ये समुद्र का किनारा है ना, ये भरत से ये आर्यखंड है, ये समुद्र का किनारा, यहाँ पर ये जो जल है लवण समुद्र का, ये जल यहाँ पर प्रवेश करता है आर्यखंड में, एक यहाँ पर द्वार है सेंटर में, इस ये समुद्र के किनारे पर एक द्वार है, उस द्वार से जल अंदर भी जाता है और बाहर भी आता है, उस द्वार पर व्यंतर देव रहते हैं, निवास स्थान उनके बने हुए। तो मध्यलोक भी व्यंतरों का निवास स्थान है, भवनवासियों का निवास स्थान है, और अधोलोक में भी भवनवासी व्यंतरवासी रहते हैं। हाँ सब व्यंतर तो सब जगह रहते हैं, मध्यलोक में भी और अधोलोक में भी, भवनवासी विशेष करके अधोलोक में ही रहते हैं, अधोलोक में रहते हैं, और जो ज्योतिष हैं वो ऊपर रहते हैं, और ये भी मध्यलोक ही कहलाता है। हाँ सुमेरु पर्वत क्योंकि इसके ऊपर गया है, सूर्य चंद्र से भी ऊंचा है वो, ये सूर्य चंद्र तो बहुत नीचे हैं, मान के चले कि ये सुमेरु पर्वत है इतना, तो ज्योतिर्लोक कहाँ है? ये धरती, ये सुमेरु पर्वत, और यहाँ घूम रहे हैं सूर्य चंद्र, सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा लगाते रहते हैं, यहाँ इतने नीचे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं, खाली है, और मध्यलोक कहाँ तक माना जाएगा? इस भूमि से लेकर यहाँ तक, और ज्योतिर्लोक कहाँ है? यहाँ है, यहाँ पर असंख्यात सूर्य चंद्र घूम रहे हैं, इसके मेरु प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो ज्योतिर्लोक यहाँ है, व्यंतरदेव यहाँ जमीन पर है और नीचे भी है, व्यंतरदेव यहाँ नहीं रहते ज्योतिर्लोक में, न जाते हैं, यहीं रहते हैं। भवनवासी और व्यंतर, इन दो देवों को ही भूमि पर देखा जा सकता है निवास स्थान की अपेक्षा से। और ज्योतिषी देवों को देखना हो तो फिर विमान में वहीं जाना पड़ेगा, तो जा ही रहे हैं, चंद्रलोक पर जा रहे हैं। चंद्र पर जाएंगे तो चंद्र विमान का देव देखने को मिलेगा, वो आराम से रहता अपने विमान में, और वहां पर ढूंढ करके आ गए, कहीं पर कोई देव नहीं है, वहां धूल पड़ी है, कहीं गड्ढा है, कहीं उतार चढ़ाव है, ये देखा, तो जहां पर ये गए हैं वो चंद्र विमान नहीं है, ये चंद्र विमान ही नहीं, क्योंकि चंद्र विमान पर मिट्टी पत्थर वगैरह कुछ नहीं है, वो तो हीरे के समान चमकीला है, उसकी जो किरणें निकलती है वो शीतल है, वो पृथ्वी ही चमकीला है, सूर्य के प्रकाश से चमक रहा ऐसा भी नहीं, वो स्वयं चमकीला है, सूर्य भी स्वयं चमकीला है। कल्पवासी देव स्वर्गों में रहते हैं, सुमेरु पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत से एक बाल बराबर छोड़कर प्रथम स्वर्ग प्रारंभ हो गया, प्रथम स्वर्ग, यहां पर स्वर्ग के देव रहते हैं, ये कल्पवासी कहलाते हैं। कल्पवासी ना, कल्पवासियों का रहने का स्थान स्वर्ग है, यहीं रहते हैं, पर आ सकते हैं यहां, वे स्वयं आना चाहे विक्रिया के माध्यम से, मूल शरीर तो वहीं पड़ा रहता है, विक्रिया के माध्यम से आना चाहे तो भूमि पर आ सकते हैं, और इंद्र परिवार सहित सभी देवों को लेकर के समोशरण में आता है ना, जन्म कल्याणक में आता है, दीक्षा कल्याणक में आता है, केवल ज्ञान कल्याणक में आता है, निर्वाण कल्याणक, सभी कल्याणकों में आता है, देवों के द्वारा ही कल्याणक होते हैं, मनुष्यों के द्वारा कल्याणक नहीं होते, देवों के द्वारा होते हैं। तो देव वैमानिक देव यहाँ आ सकते हैं, ज्योतिषी देव भी नीचे यहाँ आ सकते हैं समोशरण में, किंतु हम वहां नहीं जा सकते, और जाकर के करेंगे भी क्या, क्यों महाराज ऐसा क्यों कहते हो, वो तो स्वर्ग है, वहां पर तो बहुत भोगों भोग सामग्री मिलती है, वहीं पर रहना अच्छा है। देखो कहा है, एक चक्रवर्ती से असंख्या अनंत गुणित सुख, असंख्यात गुणित कह सकते, असंख्यात गुणित इंद्रिय सुख किसको है, एक देव को है, एक देव को है। तो चक्रवर्ती से ज्यादा सुख कहने से रागी जीव तो तैयार हो जाएगा, और रागी जीव अधिक है यहां, मनुष्य तैयार हो जाएंगे, ये सब ये तैयार होते हैं, इसलिए तो आने का निषेध है, वहां कोई नहीं आ सकता, ले जाएंगे तो ये नीचे नहीं उतरना चाहेगा। ये रहस्य है। तो प्रकृति ने आपको ऐसा व्यवस्थित कर दिया है, इस सृष्टि ने ऐसा व्यवस्थित कर दिया है, तुम जितना राग करते हो उस राग के द्वारा तीन लोक की संपत्ति भी दिया जाए तो तुम्हारा राग कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए मनुष्य गति को छोड़कर तुम ऊपर मत जाओ, शरीर सहित जाओगे तो तुम लौट करके नहीं आओगे, आना पसंद नहीं करोगे, इसलिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आदमी को स्वर्ग में नहीं भेजना, क्योंकि आएगा नहीं, और देव यहां पर आते हैं तो उनको मन नहीं लगता, यहां पर कोई इंद्रिय विषय नहीं है, चलो चलो जल्दी वहीं चलो, वो चले जाते हैं। तो जहां कम है, कम के स्थान पर ज्यादा वाले तो आ सकते हैं, पर जहां ज्यादा है इंद्रिय विषय वो कम वाले वहां नहीं जा सकते, सृष्टि ने कहा वहां जाओगे तो तुम लौट करके नहीं आओगे, और रागी जीव अधिक से अधिक हैं इस संसार में, रागी अधिक हैं, वीतरागी कम है, उदासीन जीव कम है, तो मुनि महाराज जा सकते, उनको तो राग नहीं होता, ऐसा कहो कि मुनि महाराज क्यों नहीं जाते, तो मुनि महाराज भी नहीं जाते, क्योंकि मुनि महाराज को स्वर्ग से कोई मतलब नहीं, अपने इंद्रिय विषयों को छोड़ करके आए हैं, तो स्वर्ग के इंद्रिय विषयों से मतलब क्या है, स्वर्ग क्यों जाएंगे, और ऐसा नियम है जैसे जिस प्रकार कौन सा पर्वत हो, मनुष्योत्तर पर्वत, मनुष्योत्तर पर्वत से उस पार जैसे मनुष्य को जाना असंभव है, वैसे ही सुमेर पर्वत की चोटी से उस पार एक बाल का ही अंतर होने पर भी मनुष्य जा नहीं सकता, मनुष्य जा नहीं सकता। अगर जाने की क्षमता होती ना तो रिद्धिधारी मुनि महाराज भी हो करके आते वहां, कैसा है स्वर्ग देख करके आते। भगवान ने स्वर्ग है ये उपदेश दिया है क्या? नहीं, मनुष्यों को विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? वहां जा नहीं सकते इसलिए विश्वास नहीं होता। लेकिन मरने के बाद तो जा सकते हैं, मरे बिना स्वर्ग नहीं देख सकते। देखो मरण करके बरमूडा ट्रायंगल में जा सकते हैं, आत्मा जा सकती है। बरमूडा ट्रायंगल एक है यहाँ, वो जहाँ कोई नहीं जा पा रहा है, शरीर सहित जाता है तो गायब हो जाता है, ऐसा यहाँ पर ही एक क्षेत्र है। ऐसा ही क्षेत्र ये मनुष्योत्तर पर्वत है, ऐसा ही क्षेत्र स्वर्ग की सीमा, उस सीमा के भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये बरमूडा ट्रायंगल है सभी, जहाँ पर हम जा नहीं सकते वो सब बरमूडा है। ये गूढ़ रहस्य के क्षेत्र सृष्टि में बहुत सारी जगह, देवों को भी बताया है। एक नीचे स्वर्ग वाला देव ऊपर स्वर्ग में नहीं जा सकता, नीचे के स्वर्गों में तो जा सकता है, जहां कम वैभव कम हो, नीचे नीचे कम वैभव वाले हैं, कम संपत्ति वाले हैं, और ऊपर ऊपर ज्यादा संपत्ति वाले हैं। तो देवों को भी यही नियम है, देखो पहले स्वर्ग वाला देव दूसरे स्वर्ग में नहीं जा सकता, दूसरे स्वर्ग वाला देव तीसरे स्वर्ग में नहीं जा सकता, लेकिन दूसरे स्वर्ग वाला देव पहले स्वर्ग में आ सकता है, मध्य लोक में भी आ सकता है, समोह शरण में आ सकता है। देखो ये कैसे रहस्यपूर्ण बातें हैं, चिंतन के योग्य हैं ये। वस्तु व्यवस्था है, टाइम है, इस चार्ट को कल समझेंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मा जग में। जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो मा, अब तक हम विषयांध रहे, अब ना हम विषयांध रहे।